हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 27। प्रशांत मनसम हियेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांति रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा है, जो हमने पहले भी चर्चा किया था, कि हमारा मन केवल भगवान में ही स्थिर हो सकता है क्योंकि भगवान के चरणों में ही हमको दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मन चाहे कितना भी चंचल हो, मन को भगवान में ही लगाने का प्रयास करना चाहिए। इन सारे डिस्कशंस में मैं एक चीज बताना चाहता हूं जरूर से, कि मन को भगवान में लगाने का मतलब ये नहीं है कि क्रिया एक ही हो। क्रिया अलग अलग हो सकती हैं व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, लेकिन क्रियाएं क्योंकि मन के द्वारा संचालित होती हैं, अपनी इंद्रियों को हम मन के द्वारा संचालित करते हैं, इसलिए इंद्रियों की वृत्ति को भगवान को समर्पित करने के द्वारा हम अपने मन को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कि भक्त खाना बनाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, अलग अलग क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा में नियोजित होकर के हम अपने मन को लगातार भगवान में लगा पाते हैं। और साथ साथ ये भी समझते हैं कि हम लोग किस प्रकार से सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद हैं, हम में और भगवान में क्वालिटी में गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है। जैसे कि एक समुद्र की बूंद और समुद्र में गुणवत्ता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अंतर तो बड़ा स्पष्ट होता है। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। और भौतिक कल्मश का अर्थ यही है कि अपने को शरीर मानना और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानना और भगवान को अपना नहीं मानना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मद भक्ति लभते पराम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। तो ये रजगुण के प्रभाव से ही व्यक्ति अपने को समझ नहीं पाता, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता है, लेकिन जब इस प्रकार के कलमश से मुक्त हो जाता है व्यक्ति तो भगवान को भी समझता है और अपने आप को भी समझता है, और इस समझावट में व्यक्ति दिव्य सुख की प्राप्ति करता है। और जब सुख की प्राप्ति होती है तो फिर मन वहां से नहीं हटता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं अत्यंतं सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्पर्शम, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। इससे पहले हमने चर्चा की थी, भगवान ने बताया था यही संस्पर्श ज भोगा, यानी इंद्रियों के विषयों से संपर्क जो है उससे जनित जो सो कॉल्ड सुख है वो वस्तुतः हमारे दुख का कारण है। और यहां बोल रहे हैं ब्रह्म संस्पर्श, भगवान के संपर्क में आकर के व्यक्ति सुखम अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्नुते, सर्वोच्च सुख को प्राप्ति करता है। थोड़ा समझिए, बहुत ही रोचक बात है। मैंने पहले भी समझाया था लेकिन इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त होता है। भगवान की वाणी को चर्चा करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, नाम जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का संग करना, भक्ति की जो नवदा भक्ति के तरीके हैं इसके द्वारा इसमें संलग्न होना, ये ब्रह्म संस्पर्श देता है हमको। लेकिन इस समय हम रजगुण तमगुण से प्रभावित चित्त के कारण इस संस्पर्श को समझ नहीं पाते, इसका अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन इसी ब्रह्म संस्पर्श के माध्यम से हमारा अज्ञान, हमारा रजगुण का या तमगुण का जो प्रभाव है हृदय पे, वो नष्ट होगा और फिर हम इसका अनुभव साक्षात कर पाएंगे और उस सुख का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन इस अवस्था में भी व्यक्ति जब भक्ति करता है तो उसको क्लेशाग्नि का अनुभव होता है। जो इस जगत में हम दुख भोगते रहते हैं, हमारा हृदय जलता रहता है, उसकी उस जलन से तो हमें मुक्ति महसूस करते ही है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भागवत कथा को सुनने से क्या होता है, शोक मोह भयापह, शोक नष्ट होता है, मोह नष्ट होता है और भय नष्ट होता है। ये शुरुआत की अवस्था का लाभ होता है। तात्पर्य हाँ, लेकिन होता क्या है इसमें और ऐसे किस व्यक्ति को रियली सुख प्राप्त होगा, तो शब्द इसमें रहस्य को खोल रहे हैं शब्द, और वो है योगाभ्यास में निरंतर लगा रह करके आत्म संयमी योगी। योगाभ्यास मतलब लगातार अपनी इंद्रियों को लगाए हुआ है निरंतर और साथ साथ अपनी इंद्रियों को भोगों में नहीं जाने देता, तो ऐसा व्यक्ति लगातार बहुत बहुत जल्दी ही भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति के सुख को प्राप्त करेगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो अगर आपने देखा, मैंने थोड़ी देर पहले ये समझाया था कि दिव्य सेवा के द्वारा भगवान की संगति प्राप्त होती है, इसे ब्रह्म संस्पर्श कहा जाता है। टेक्स्ट नंबर 29, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है और अपने हृदय में भी देखता है। अगर अपने हृदय में नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरों के हृदय में भी नहीं देख पाएंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। अर्थात जब जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है तो अपने आप को कुत्ता मानने लगता है और कुत्ते को सुलभ भोगों से अपनी पहचान करता है। सूअर के शरीर में रहता है तो सूअर को सुलभ भोगों से अपनी पहचान करता है, उस प्रकार के भोगों के प्रति आकृष्ट रहता है। लेकिन भगवान किसी भी शरीर में रहते हुए उस शरीर को सुलभ भोगों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बिल्कुल अलग रहते हैं उससे। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान सभी के हृदय में क्या हो रहा जानते हैं, लेकिन हम अपने ही हृदय में हमने क्या सोचा, आज से एक दिन पहले हम क्या सोच रहे थे, ये भी हमारे लिए जानना मुश्किल है। दो तीन घंटे पहले क्या सोच रहे थे, ये भी अंदाज लगाना, याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान सबके हृदय में है और जिस जीवात्मा ने अनंत समय से, अनादि काल से क्या सोचा, क्या इच्छाएं करी, क्या कर्म किए, इस सब भगवान को पता रहता है। तो कितने अद्भुत हैं भगवान। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है और ये अंतर हमें समझ में आना चाहिए। अपने गुरु को भगवान कहने से पहले उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनको सभी के हृदय में जो चल रहा है वो पता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए, किसी को तुरंत ही भगवान नहीं कह देना चाहिए। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। यानी कि झूठे लोग, जो लोग भक्ति करते नहीं ठीक से, वो किसी को भी मान लेंगे भगवान और कह देंगे हाँ हमारे गुरुजी ही जो है वो भगवान के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है, परमात्मा रूप में विद्यमान है। ऐसा नहीं होता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आत तत्वाच्च मात्र तत्वाच्च आत्मा ही परमो हरि ही। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन लोग भगवान के प्रति सम नहीं है। अर्थात रजगुण तमगुण से प्रभावित जीवात्मा भगवान से ऐसी सुविधा चाहता है जिससे वो और पापमय कार्य करे। तो क्योंकि भगवान सबके प्रति सम है, इसलिए भगवान उसको ऐसी सुविधा और प्रेरणा देते हैं। भगवान की सुविधा और प्रेरणा के बिना कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकता, कोई पापमय कार्य भी नहीं कर सकता। लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा करता है तो भगवान उसको प्रेरित करते हैं और शक्ति देते हैं कि तुम पाप करो। तो ये भगवान की समता है। लेकिन फिर भगवान भगवद गीता से शास्त्रों के द्वारा बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से इन पाप की प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए, ये उनका प्रेम है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति या भगवत शक्ति में स्थित है। यह जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए अपरा शक्ति से बद्ध है। हम लोग बाह्य रूप से भी भगवान की शक्ति में स्थित हैं, अर्थात हमारा जो शरीर है वो भी भगवान की शक्ति से बना है। भूमि से, अग्नि से, जल से बना हुआ शरीर और भी तत्व हैं, वो सब तत्व भगवान की ही शक्ति हैं। तो भगवान की शक्ति में हम स्थित हैं, लेकिन हम लोग भगवान की शक्ति से भगवान की अपरा शक्ति हैं। क्षमा कीजिएगा, हम लोग भगवान की पराशक्ति हैं। पराशक्ति का मतलब होता है जो चेतन होती है, और भगवान की अपराशक्ति जो है वो है जड़, जिसमें कोई चेतना नहीं होती है। तो हम अपराशक्ति से बद्ध है, अर्थात हम अपनी पहचान इस भौतिक जगत की वस्तुओं से, अपने शरीर से करते हैं। तो ये हमारी बद्धता है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। बहुत अच्छा है। केहो माने केहो न माने, सबाय तुम्हार दास। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, सब लोग भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर कंसेप्ट है। भक्ति करते समय भी व्यक्ति अगर माया में चला गया तो भी उसे सोचना चाहिए कि वो माया के में गया तो भी वो कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, माया के द्वारा सेवा कर रहा है, लेकिन कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो उसे वापस डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करने में संलग्न हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण उसको रिजेक्ट कर देंगे, कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी स्वरूपगत स्थिति है कृष्ण की सेवा करने की। हम माया में पड़े हैं तो भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जो जेल में है, वो जेल का कैदी भी सरकार के द्वारा ही पालित होता है और उसको नौकरी सैलरी भी मिलती है काम करने की जेल में, लेकिन जेल के कैदी की सुविधाएं कम होती हैं क्योंकि वो ठीक से सेवा नहीं कर रहा है, डायरेक्टली सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन आईएएस ऑफिसर भी गवर्नमेंट में सेवा करता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि गवर्नमेंट की आज्ञा के अनुसार सेवा कर रहा है। तो हमको अपनी स्वेच्छा का उपयोग करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। चाहे कितनी भी गलतियां हो, चाहे कितने भी अपराध हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की सेवा को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम त्याग सकते ही नहीं है। ऐसे समझिए, भगवान की सेवा को हम त्याग सकते ही नहीं है। या तो हम प्रत्यक्ष रूप से करेंगे या अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। भक्ति करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, माया की सेवा करते हैं, भोग करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, लेकिन सेवा तो हम भगवान की करते ही हैं। और इसीलिए योगी, एक सच्चा योगी, महान भक्त देखते हैं कि सब लोग भगवान की सेवा में लगे, उन्हें वाकई साक्षात्कार होता है, बस थोड़ा गलत तरीके से लगे, इसीलिए वो सबको सम्मान भी देते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, अभी हमने समझा दिया, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह संदृष्टि पूर्ण होती है। क्यों पूर्ण होती है? क्योंकि वो देखते हैं कि सभी लोग भगवान कृष्ण के सेवक हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे हम कृष्ण की सेवा में करने के शुरू करते हैं, जैसे मैं गीता ये बोल रहा हूँ और आप इस गीता के लेक्चर को सुनेंगे, तो तुरंत ही हम लोग पराशक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तुरंत। और जैसे ही हम लोग भोग करने के लिए कुछ पढ़ेंगे या कुछ गलत चीज पढ़ेंगे तो तुरंत अपराशक्ति के संपर्क में आ जाएंगे। और इस कारण से हम महसूस करते हैं कि जब भगवद गीता सुनते हैं तो हमारे हमारा अज्ञान नष्ट होता हुआ महसूस होता है, और इसके बदले हम जब दुनिया की चीजें पढ़ते हैं तो हमारा अज्ञान बढ़ जाता है। तो स्पष्ट रूप से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।